इसीलिए अब अगली आयत में हम सबको एक प्रोटोकॉल सिखाया, क्योंकि देखिए इतना सुन के डर तो लग गया ना, कितनों को डर लग रहा है कि मेरे अंदर निफाक नहीं है, तो जब है तो फिर उससे बचना है ना। तो अल्लाह ताला मुझे और अब आपको एक रेमेडी दे रहे हैं, एक तरीका कि खुद को चेक कर लो कि कहीं तुम इसके शिकार तो नहीं हो रहे। कैसे? वक़द नज़ला अलैकुम फिल किताब, और ये बात वो तुम पर नाजिल कर चुका है किताब में। क्या बात? ये के अन इज़ा समीतुम आयातिल्लाहि युकफरु बिहा व युस्तहज़ऊ बिहा, कि जब तुम सुनो अल्लाह की आयतों के साथ कुफर किया जाता है और इनका मजाक उड़ाया जाता है। यानी जब किसी महफिल में अल्लाह की आयतों का इनकार या फिर उनका मजाक हो तो क्या करो? फला तक़ुदू माहुम, हरगिज न बैठो उनके साथ, हत्ता यहूदू फी हदीसिन गैरी, यहाँ तक कि वो किसी और बारे में बात करें। यानी ऐसी मौजू पे जो बात हो रही है जो इस्लाम के कुरान के अहकाम के खिलाफ है, उसका रंग ढंग, उसका तौर तरीका, दीन का मजाक है, निकाह मिन सुन्नती लिखा हुआ है और सारी सुन्नतें उसी शादी में टूट रही हैं, तो फिर उठ जाओ, फिर खड़े हो जाओ। अब अल्लाह करे लिखा जा चुका है, कहाँ लिखे आपने तो भी नहीं पढ़ा, इशारतन बात हुई थी पीछे, लेकिन असल में इशारा इधर है सूरत अल अनाम की आयत 68 की तरफ, और वो पहले नाजिल हो चुकी थी आयत, इसलिए यहाँ कर दिया कि उसमें अल्लाह ताला ने ये बात कह दी कि जब कुफार तुम्हारे सामने अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाएं, कुरान का मजाक उड़ाएं, तो तुम बिल्कुल वहां ना बैठो, उठ जाओ। ये मक्की आयत है। उस वक्त चूंकि मुसलमानों में इतना जोर नहीं था कि कुफार को ऐसी हरकतों से जबरदस्ती मना करते, तो इसलिए उनको बताया गया कि ऐसी महफिलों में मत बैठो, एहतजाजन वहां से उठ जाओ, क्योंकि ऐसी महफिलों में बैठने से ईमान की गैरत में कमी हो जाती है। पहले ईमान कच्चा था, अब उसको और ऊपर चोट पड़ गई, और जिसकी ईमान की हिस कुंद बढ़ गई तो फिर उसने तो अपना नुकसान कर दिया। क्या करो? कब तक? जब तक कि वो किसी दूसरी बात में ना आ जाए। यहां देखिए रिश्तेदारियां सिखाई गई, रिलेशन मैनेजमेंट सिखाई गई, रिश्तेदार को नहीं छोड़ना, उसकी उस खराबी को छोड़ना। जैसे कैंसर होता है ना, तो पूरे बंदे को नहीं मार देते, उस कैंसर ज्यादा हिस्से को निकाल के जहां तक कर सके रिमूव करके फिर कीमो कर देते हैं। यही मुराद है। बढ़के ना मारो, ताने ना दो, हम ये नहीं करेंगे, हम नहीं ये करते, वो नहीं करते, हम आपसे नहीं मिलते, आपका और रास्ता, हमारा और रास्ता। बस उनकी उन महफिलों में जाना आना छोड़ दो, और झूठ बोल के नहीं छोड़ो, सच से बोलो, और सबके बीच में नहीं कहो, और उस दिन जिस दिन बुलाया जाए वहां जाके नहीं कहो कि हम ये बताने आए कि ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें भी पहले पता थी, उनको भी पता थी, पहले से अपने अमल से बता दो कि मैं ऐसे नहीं करती, मैं नहीं आऊंगी। हाँ, जहां अच्छी बातें आऊंगी, अच्छे मौके पे जाइए, एक दिन पहले जाइए, एक दिन बाद में जाइए, तौर तरीके के साथ कीजिए, लेकिन उस जगह उस वक्त जाके उनको रौनक देना, गूंगे शैतान बन जाना, वल्लाही अल्लाह को दावत देते हैं हम इस बात की कि आप तू भी हमारा मुकाबला करो। अगर वहां बैठे रहे तो क्या होगा? इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, उस वक्त तो बिल्कुल तुम उन्हीं के माने दो, चाहे तुम गिफ्ट देने के नाम पे गए हो, चाहे तुम वहां जाए गए हो इसलिए कि तुम सिला रहमी करोगे, कतर रहमी से बचने के लिए, लोगों से या ससुराल के डर से गए हो, या मैके से या बच्चों के, इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, उसी जैसे हो। हदीस में आता है कि जो बंदा किसी ऐसी जगह गया जाता है जहां भी, यानी खुद वो काम नहीं भी करता लेकिन दिल से उस काम के साथ मुतमईन है, वो नहीं जैसा, इसलिए तुम उधर है। देखिए कि कपड़े में पानी में रंग है, काला रंग है, मिसाल है, आप उसमें कपड़ा खुशी से डाल दें, अनखुशी से डाल दें, गलती से डाल दें, जो पानी में जाएगा वो काला काला नहीं तो ग्रे तो हो जाएगा ना। ऐसी महफिलों में जाने से पहले वाला और यहाँ से उठ के आने वाला दिल एक नहीं होता, ये तो मैं 100% कहूंगी। हम में से कोई खुद को इतना मुत्तकी पारसा ना करे कि हमें ये जगह अच्छी नहीं लगेंगी। आहिस्ता आहिस्ता वो माजी के सुने हुए गाने भी याद आ जाएंगे, उनकी धुनें भी याद आएंगी, को माजी की याद आएगी, हम भी कभी ऐसे ही बाल लहरा के फिरते थे, हाय क्यों मिल गई हिदायत इतनी जल्दी, क्यों पड़ गई मुश्किल हमारे ऊपर, क्या डैशिंग, पता लग रहा है ये कहाँ से मेकअप करा के आएंगे, सब पता, हम भी जाते होते थे। और बाज़ लोग तो फिर अपने किस्से सिखाते हैं, सुनाते हैं जहालत के, रोना आना चाहिए दुख के साथ, गम के साथ, और यही कानून शरीयत के नाम पे मुकरर करदा महफिलों का, कि जहां लोग अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाएं, नबी की मोहब्बत के नाम पर शिर्क के मुर्तकिब हों, क्यों उठे? हमारे रिश्तेदार नाराज होंगे, हमारे दोस्त नाराज होंगे। अल्लाह कहते ओके, यू वॉन्ट टू बी विद देम, इट्स फाइन, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। इन अल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीअ। ओके, यू वॉन्ट देयर कंपनी, मैं तुम्हें अलग नहीं करूंगा। यकीनन अल्लाह ताला जमा करने वाले मुनाफिकों को और काफिरों को भी जहन्नुम में सब के सब। दुनिया में तुम्हें काफिर अच्छे लगते थे तो वहां भी कुफार का साथ दूंगा। ऑफ कोर्स अल्लाह ताला तुम्हारी चॉइस की कदर करता, जो तुम्हें पसंद था। अब ऐसे ही होना चाहिए ना, कभी कभी दोस्तियां होती हैं तो हम कहते हैं नहीं, इनका ग्रुप एक कर दें, इनको एक जगह कर दें, अच्छा एक जा रहा है इसको भी जाने दें, ये इसको भी उधर भेज दें, कहते रहते हैं ना हम लोग। तो अल्लाह कहते फिर मैं तुम्हारे दोस्तों के बीच में रुकावट क्यों बनू? जाओ, तुम्हें कुफार अच्छे थे तो तुम भी काफरों के साथ जाओ। कौन से काफिर? बात आगे जाके पूरी होगी, आयत 141। अल्लज़ीन यतरब्बसून बिकुम, वो लोग जो तुम्हारे लिए इंतजार की हालत में हैं। ये कौन है? मुनाफिक, जो गर्दिश ज़माना के मुंतजिर हैं। देखते क्या है कि देखो हालात का ऊंट किस करवट बैठता है। तेल देखो तेल की धार देखो, जुमले सुने में, चलो देखते हैं नतीजा किसका है, आखिरी फतह किसके साथ होगी, हम उसका साथ दे देंगे। कभी आपने इलेक्शंस की कंपेन सुनी हो? कुछ पार्टीज आखिर तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताती, कुछ लोग भी कहते हैं देखते हैं जो पार्टी जीतेगी हम उसका साथ देंगे। मुनाफिक का हाल भी यही होता है, और इसको अल्लाह ने यहाँ देखिए कुफर का है कि जो नबी और नबी के साथियों और दीन वालों को दबता देखना चाहते हैं कि देखो आज बड़े हैं कल देखते हैं। यकीन कीजिए बहुत सारे लोग हैं जो आपका भी रास्ता देख रहे हैं, ये कोई मौका, देखते हैं ये कितने दिन चलती हैं, और ये अभी पांचवे पारे पे पहुंची हैं, अभी आगे देखेंगे इनके साथ क्या होगा, ये ऐसे थोड़ी हैं। और आप जरा उनको मुंह बना के तो दिखाएं कि मैं बीमार हूँ, वल्ला ही वो आपका वो ख्याल रखेंगे जो कभी क्या किसी ने रखा हो। वो तो खुश हैं कि आप बीमार हुए और आपकी वो खतर करें, वो तो खुश हैं कि आपको कोई काम पड़ा तो वो खुशी खुशी अपनी गाड़ी लेकर आए और आपका वो काम कराए, क्योंकि उनको पता था कि आप उनके हाथ से निकल रही हैं और अब उन्होंने आपको पकड़ लिया। देखिए जब हम अल्लाह के रास्ते से पलटते हैं ना तो कईयों को खुश करते हैं अल्लाह को नाराज करने के साथ। अल्लाह तो नाराज होता है, खुश बहुत लोग होते हैं, क्योंकि जिनको शक पड़ गया था कि अब आप तो गई, हम तो पहले ही कहते थे आप बहुत इमोशनल हो गई, अच्छा मुंह से कुछ नहीं कहेंगे लेकिन अपने रवैयों से बताएंगे वी आर योर वेल विशर। और फिर इंसान को सबसे बुरा जो लगेगा ना वो अपना दीन की दावत देने वाला साथी लगेगा, वो साथी लगेंगे जो फजर के लिए आपको फोन कर देते हैं, अलार्म लगा देते हैं, आपके घर की बेल बजा देते हैं कि भाई सब आ जाए नमाज का वक्त हो गया, वो जहर लगेंगे आपको। और जो कहेगा नहीं ये नींद की गोली खाएं और सोएं 12 बजे तक, फिर देखिए आपको कितना सुकून मिलता है, आप कहेंगे माशाल्लाह। फइन काना लकुम फतहु मिन अल्लाह, फिर अगर तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से फतह आ जाए, यहाँ देखिए फतह अल्लाह की तरफ से आती है, कालू अलम नकुम माकुम, तो फिर मोहब्बतें लेके आ जाते हैं, क्या हम आपके साथ नहीं थे। ये है मुनाफिक की पॉलिसी, फायदों के हरीस बनते हैं, पहले दिल में ख्वाहिश कह के इस्लाम की कश्ती डूबे, मुसलमान तबाह हों, सब खत्म, ये क्या रंग में भंग डाल दी इस कुरान ने। और जब कभी मुसलमानों को पता हो जाए तो उनको समझ आ जाती है कि फायदा तो इधर है, जब गम उनको कोई पड़ता है तो वो भी दीनदारों को ही बुलाते हैं कि हमें भी कोई दरवा करा दें, कोई दर्स करा दें, कोई दुआ करा दें, ये गम पड़ गया। लेकिन फाइन कान लिल काफिरीन नसीबन, देखिए अल्लाह ने काफिरों के लिए फतह की जगह नसीब का लफ्ज दिया है, फतह कभी नहीं हुई काफिर की, नसीब के हिस्से से कभी कभी वो जीत जाए तो और बात है, तो कहा अगर कोई हिस्सा पहुंच जाए काफिरों को, किसका हिस्सा? फतह का। कालू, तो वो कहते हैं अलम नस्तहविज अलैकुम, तो वो कहेंगे, किसको कहेंगे? नीचे लिख लीजिए कालू के नीचे, अपने काफिर दोस्तों से, क्या हमने तुम्हारा घेराव नहीं कर लिया था? वनमनअकुम मिनल मुमिनीन, और हमने बचाया ना था तुमको मुसलमानों से। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए इस बात को, फिर आपको बात ज़्यादा अच्छी समझ आ सकती है इंशाल्लाह, कि जंगों में गए पीछे खड़े रहते थे ऐसे लोग, काफिरों को कहते थे हम तुम्हारी तरफ से लड़ रहे हैं, मुसलमानों को एहसास दिला देते थे हम तुम्हारे साथ हैं, एंड पे फतह मुसलमानों को हुई, माल गनीमत का मौका आया बांटने का, तो ये कहते थे हाँ हाँ वी वाज देयर, हम उस दिन थे, वो हिस्सा ले जाएंगे। अब बिलफर्ज दूसरी तरफ बात चली गई कुफार की तरफ, या कुफार को कोई फतह हुई तो फिर कुफार के पास, कुफार को तो पता होता है ना कि ये तो मुसलमानों की तरफ से आए हुए थे। जाहिर जब नाम से मुसलमान थे तो नाम थे, तो फिर कुफार को कहते तुम्हें पता है वो जंग के मैदान में तुम मेरे सामने आ गए थे तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, और तुम्हें पता है फलां जगह एक शख्स तुम्हें तीर मारा था, मैं जल्दी से बीच में से गुजर गया ताकि उसका तीर किसी और को लग जाए। ना को यानी दो रुखे चिकने पाठ, कभी इधर कभी लुढ़कते हैं, कभी थाली के बैंगन की तरह इधर। तो दिल में ये है, असल में इनका इनकी दोस्ती किससे है? मुसलमान से नहीं, काफिर से नहीं, इनकी दोस्ती अपने मुफाद से है। मुनाफिक मुफाद परस्त होता है, और ऐसी बातें करके सोचते क्या है कि हमने देखो दीन भी रख ली, दुनिया भी रख लिया, सो इंटेलिजेंट वी आर। अल्लाह कहते हैं फल्लाहु याहकुमु बैनकुम यौमल कियामा, तो अल्लाह ही फैसला करेगा तुम्हारे माबैन कियामत के दिन। ये तो लग पता जाएगा उस दिन, वो दिन जिस दिन यौम यकूम अन्नासु लिरब्बिल आलमीन, 30वें पारे में आता है, जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। वलन यजअलल्लाहु लिल काफिरीना अलल मुमिनीना सबीला, और अल्लाह ये अहले ईमान के मुकाबले में काफिरों को राह याब नहीं करेगा। यानी ये कभी नहीं हो सकता कि अल्लाह मोमिन को पीछे कर दे और काफिर को फायदा दे दे। आप देखिए कि सूरह निसा का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुनाफिकों पे है ना, बराह रास्त ये तो नहीं कहा कि या अय्युहल्लज़ीना नाफ़क़ू, लेकिन या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर निफाक खोल दिया। क्यों? कि दावा तो था ही ईमान का, और क्यामत तक के लिए क्राइटेरियन पेश कर दिया कि ऐसे लोग जो दो कश्तियों के सवार बन के दुनिया में फायदे लेना चाहते हैं उनके साथ क्यामत के दिन होने क्या वाला है। ये अपने आप को ज्यादा अकलमंद ना समझे। अब आखिरी आयतों में जरा इनका अंजाम देखिए, कुछ इनकी करेक्टरिस्टिक्स और कुछ इनका अंजाम, और सुनते वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रखिए, किसी दूसरे को मैं और आप ना इस वक्त सोचें, क्योंकि दूसरे को सोचना हमें फायदा नहीं देगा, हाँ अपने ऊपर लेंगे। हो सकता है कि कोई खौफ आ जाए, कुछ भी बातें दिल में आ जाएं और हम अल्लाह ताला की नजरों में जचने लग जाएं। फरमाया आयत नंबर 142, इन्नल मुनाफिकीन युखादिउन अल्लाह, यकीनन मुनाफिक कोशिश कर रहे हैं अल्लाह को धोखा देने की। पीछे गुजरा सूरत बकरा में क्या आया, युखादिउन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदाउन इल्ला अन्फुसहुम, लेकिन शऊर नहीं रखते। यहाँ फिर वही बात है, क्या धोखा देते थे मुनाफिक अल्लाह को। इनका ख्याल क्या था कि चूंकि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो धोखा अल्लाह खाएगा और हमें भी जन्नत दे देगा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की वजह से। अल्लाह ताला कहते हैं इनकी ये गलत फहमी है, वह खादियुहुम, हालांकि वो इनको धोखा दे रहा है। कौन? अल्लाह। अब अल्लाह धोखा दे रहा है, लफ्ज़ अच्छे नहीं लगते। तो अरबी जुबान का एक असूल है जिसको बाबे मुशारकत कहते हैं, शराकत नहीं होती शिरकत, इंग्लिश में कहें टिट फॉर टैट, जो तुम करोगे वही तुम्हारे साथ होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी अल्लाह धोखे नहीं देता, लेकिन तुम चूंकि धोखा ले रहे हो तो अल्लाह तुम्हारे साथ सेम एज इट इज, सेम फॉर यू, जैसे सेम फॉर यू लोग बोल देते हैं ना, जो तुम अल्लाह के साथ करोगे अल्लाह तुम्हारे साथ वही करेगा। कैफियत क्या है? अब इतना सुन के तो बस दिल में आ जाता है अल्लाह, पता लग जाए कि मैं मुनाफिक तो नहीं हूँ। हजरत उमर फारूक हजरत हुजैफा के पास जा जाके मिन्नतें करते थे, हुजैफा तुम्हें अल्लाह के नबी ने नाम बता दिए थे मुनाफिकों के, सिर्फ इतना बता दो कि मेरा नाम तो नहीं है उसमें। पीछे पीछे रहते, जिसका नमाज जनाजा हजरत हुजैफा ना पढ़ते हजरत उमर भी ना पढ़ते, कि हो ना हो ये शख्स निफाक पे होगा। 70 के करीब सहाबा, जिसमें हजरत आयशा जैसे और भी बड़े नाम है, जो खुद पर निफाक का शुबा रखते थे, और रिवायत में आता है कि खुद को निफाक से बरी सिर्फ मुनाफिक समझता है। यानी खुद को कि नहीं मेरे अंदर कोई निफाक नहीं है, ये सिर्फ मुनाफिक ही समझेगा। मोमिन को तो हर वक्त धड़का लगा रहता है कि मेरे अंदर क्या है। तो कुछ अलामतें तो हमने सूरह बकरा में पढ़ ली थी ना दूसरे रुकू में, अब एक और अलामत, वैज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, और जब वो खड़े होते हैं नमाज के लिए तो बड़ी सुस्ती के मारे, कसल मंदी का लफ्ज़ उर्दू में पढ़ते हैं ना, यही लफ्ज़ कुसाला है, सुस्तियों के मारे हुए। ये कभी कभी की बात नहीं है कि कभी कभी तबीयत पे बोझ आ गया, थक गए थे, नहीं, इनकी आदत ही है। जब नमाज के लिए खड़े होते हैं साफ दिख रहा होता है कोई तबीयत पे खुशी नहीं, दिल का बोझ नहीं। खड़े भी टेढ़े, एक टांग टेढ़ी एक सीधी, सजदा भी टेढ़ा मजबूरन खड़े हैं। यहाँ देखिए कामा के बाद इला आ रहा है, पीछे कामा के बाद बा पढ़ा था आपने। ये प्रपोजिशंस होती हैं, जैसे इंग्लिश में आप देखे पुट इन पुट आउट, साइन इन साइन आउट, बिल्कुल इसी तरह वर्ब के बाद प्रपोजिशन जब बदलते हैं तो मानी बदल जाते हैं। टू गिव होगा तो देना, तो टू गिव अप का मानी होता है छोड़ देना, मानी बदल जाते हैं। गिवन बात और ही हो जाएगी। इसी तरह अरबी जुबान में कुछ हरूफ जार होते हैं जो लफ्जों के बाद लगते हैं तो मानी बदलते हैं। पीछे हमने पढ़ा रिजाल कवामून अला निसा, तो वहां मानी था सरबराही का, जिम्मेदारी का, जिसका हुक्म नाफिज हो। अब यहाँ के काम इला तो मतलब क्या, किसी चीज के लिए खड़ा होना, किसी चीज की तरफ खड़ा होना, कुछ काम करने की नीयत से खड़ा होना, किसी काम का इरादा करना। पीछे कवामूना बा के साथ पड़ा बिलकिस्त, तो वहां मानी था किसी चीज को कायम रखना। तो ये छोटे छोटे मानी लफ्जों को बदल देते हैं। अब नमाज में उनकी हालत क्या थी, कुसाला। यहाँ एक लफ्ज आपने नोट किया, सुस्ती तो की है, कुछ और भी किया कि नहीं जी, आप में से कोई शेयर करें। सोते रहते हैं, उकताए हुए होते हैं जी, आप शाहीन। खुशी व खुदू नहीं होता जी, पीछे से आप देर से पढ़ते हैं। युराउन नास, सुस्ती कुसाल। युराउन नास वला यस्कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, अल्लाह का जिक्र नहीं करते मगर बहुत थोड़ा। लेकिन एक बात जिस पे आप में से किसी की तवज्जो नहीं गई कि उस दौर के मुनाफिक भी नमाज पढ़ते थे, क्योंकि उस दौर में एक सिंबल था नमाज, इस्लाम का इजहार। आज के दौर का दुख क्या है कि लोग नमाज की केयर ही नहीं करते। वो अपने निफाक को छुपाने के लिए पढ़ते थे, लेकिन ज़रा दिल तो कर नहीं रहा होता था, अल्लाह से तो कोई मोहब्बत नहीं थी, कूमो लिल्लाही कानितीन पे तो नजरें कोई नहीं थी। तो जब दिल ना चाह रहा हो तो आप किसी के लिए खड़े हों तो आप गुस्से में होते हैं। किसी ऐसे मेहमान को लेने जाएं जिसको आपका दिल ना करे तो साथ बुड़बुड़ाते हैं, लोग खड़े होते हैं, अभी भी नहीं बाहर आए, अभी भी नहीं आए। और एक वो होता है जिसके लिए आपकी नज़रें बेचैन होती हैं तो आप कहते हैं कोई बात नहीं आ जाएंगे, अभी तो थोड़ी देरी हुई, अभी तो 2 ही घंटे हुए खड़े हुए, फर्क है ना। तो जिसको अल्लाह से मोहब्बत है वो तो खड़ा है, ये तो दिखावे के लिए। इनको तो सिर्फ अपना नाम लिखाना था कि जैस वी आर स्टिल मुस्लिम। आज के दौर में चूंकि नमाज हमारे लिए कोई क्राइटेरियन नहीं रही, सारे आम लोग नमाज नहीं पढ़ते। आप कभी किसी बच्चे से पूछें आप नमाज पढ़ते हैं जी, अम्मी अबू पढ़ते हैं, अम्मी पढ़ती, अबू नहीं पढ़ते। हाँ मेरे अबू जुम्मे को पढ़ते हैं, हाँ ईद की पढ़ते हैं, और नो गिल्ट एट ऑल, नो गिल्ट एट ऑल। क्योंकि उस दौर में नमाज जिसके साथ नहीं थी उसके साथ तो फैसला तलवार कर देगी, भाई बताओ क्या बात है, किधर हो, इस्लाम छोड़ दिए, ये हालात है। चलो मारी बांधी जैसी भी थी वैसी भी थी। और आपको पता है कि अब्दुल्ला बिन उबई तक मस्जिद में आके पढ़ता था। आज नमाज तो एक बहुत बड़ी बात है, मस्जिद की बात तो छोड़ ही दीजिए, जमात तो पीछे कर दें, बस यही बहुत है कि 2-4 टकरे मार मूर के हम आ जाते हैं। किस दौर में आज हम आए, सोचिए तो दिल बंद होने लगता है। और अगर हमने अपनी नस्लों को ठीक ना तैयार किया तो ये हमें कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि हाँ वो मुस्लिम जो कभी कभी नमाज पढ़ते हैं, ये रीजन है उनकी उन नमाजों की कि सिर्फ लोगों को दिखाना है। क्यों दिखाते तो बंदा वो चीज है जो बड़ी अच्छी हो, तो वो अच्छी उस वक्त ये थी कि नमाज पढ़ना उस वक्त एक अच्छी बात थी। आज कहते हैं हाँ ये मौलवी सा पढ़े। कभी आपने सुना कि आजकल बड़ी नमाजें पढ़ रहे हैं, खैर है अल्लाह से कोई काम रुका हुआ है, पेपर्स होते हैं तो बच्चे नमाजें शुरू कर देते हैं। वला यस्कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, अल्लाह का जिक्र थोड़ा ही करते हैं, दिल जो कोई नहीं है। नमाज का असल मकसद क्या आपको पता, जिक्र। हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने सूरह ताहा में कहा वाकिमिस्सलातलिज़िक्री, और नमाज पढ़ो मेरी याद के लिए। देखिए नमाज में अल्लाह याद आता है, जिसके घर जाते हैं ना फिर उसके बारे में हम बातें करते हैं ना, अच्छा और क्या है, बच्चे किधर हैं, घर कैसे, सब ठीक है, वरना हम कई कई महीने उन रिश्तेदारों का सोचते भी नहीं है। तो नमाज और हज और उमरे में अल्लाह ज्यादा क्यों याद आता है, कि हम सबसे कट के उसकी तरफ होते हैं। और अगर आपकी जिंदगी में कुरान आ जाए तो 24 घंटे के आप अल्लाह वाले हैं। चौथी कैफियत आयत 143 मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, ये इनके माबैन तज़ब्ज़ुब में पड़ गए, मुज़ब्ज़ब हो गए। ये बड़ा लंबा लफ्ज आ गया मुज़ब्ज़ब, ये रुबाई है ज़ालबा ज़ालबा ज़ब ज़ब, किसको कहते हैं? आप इसको सुनेंगे ना तो आपको घिन आएगी। किसकी मिसाल दी अल्लाह ने? जुबाब कहते हैं अरबी जुबान में मक्खी को। मक्खी क्या करती है? भिन भिन भिन, जहां गंदगी देखती है वहां बैठ जाती है। साफ चीजों पे मक्खी नहीं बैठती। ये है मुनाफिक। ये जो मुजब जबीन लफ्ज से भी लग रहा है ना, जब जबा जब जबा, जलजला जैसे लफ्ज है, वो भी रुबाई है। यानी मुनाफिक यूं भिन बनाता फिरता है, यूं देखता है किधर फायदा है वहां ढूंढो, किधर से कुछ मिलना ले लूं, किधर से कोई फायदा है। कुफर और इस्लाम के बीच में कैसी इनकी कश्मकश है। ला इलाहा उलाई, ना तो वो इनकी जाने पूरे हैं, किनकी? मुसलमानों की। वला इलाहा उलाई, और ना उनकी तरफ, यानी कुफर की। यानी मुसलमानों के साथ भी मुनाफिक हैं और काफिरों के साथ भी ये मुनाफिक हैं। नोट कीजिएगा, मुनाफिक ना तो वो मुसलमान का सिंसियर है ना काफिर का, दोनों के साथ ये कुफर पे हैं। फमै युद्लिल्लाहु फलन तजिदा लहू सबीला, और जिसे अल्लाह ही ने गुमराह कर दिया हो तो इसके लिए तुम कोई रास्ता ना पाओगे। इधर से उधर जाने आने वाले कभी एक जगह नहीं रहते। देखिए, इसको सुनने के बाद मुनाफिक के बारे में रहम नहीं आ रहा दिल में? किसी ने कहा कि मक्खी की 500 आंखें होती हैं, छोटे छोटे कॉर्निया होते हैं ऊपर, छोटे छोटे, चारों तरफ से देखती है। कहा 500 आंखें होती है, फायदा क्या? बैठती तो फिर भी गंदगी में ही है ना। तो मुनाफिक जितना मर्जी कनिंग हो, इंटेलेक्चुअल, अकलमंद, जीनियस, दिस, बैठता गंद पे ही है, दुनिया के गंद पे। उसको दुनिया की चीजें अच्छी लगती हैं।